نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد قال الله تبارك تعالى في القران المجيد بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللہ تعالیٰ کا احسان ہے کہ اس نے ہمیں زندگی دی اور زندگی سے فائدہ اٹھانے کا موقع ابھی تک دیا ہوا ہے. ابھی تک کا لفظ میں نے اس لیے بول دیا کہ زندگی اصل میں مہلت کا نام ہے. آج میں اور آپ چاہیں تو نفل پڑھ لیں, چاہے تو ہم روزہ رکھ لیں, اچھا عمل کریں یا برا عمل کریں, لیکن اصل بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو مجھے پورا اختیار اور آزادی دی ہے. سورۃ دہر میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انا ہدیناہ السبیل اما شاکرم و اما کفورا, ہم نے انسان کو دونوں راستے دکھا دیے, اب اس میں سے چاہے تو وہ شکر کر لے یا نہ شکرہ بن جائے. تو حقیقت یہ ہے کہ اس زندگی میں جو بھی اللہ تعالیٰ نے 50-60 اور اس کے کم و بیش مجھے اور آپ کو دیا ہے, ہم سب کو مجبور نہیں کیا, صرف راستہ دکھایا ہے اور اس کے بعد موقع دیا ہے کہ ہم اپنی زندگی سے بھرپور فائدہ اٹھائیں. اب یہ میرے اور آپ کے ہاتھ میں ہے کہ ہم اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں کہ نہیں اٹھاتے. موت کیا ہے؟ مہلت ختم ہونے کا نام. جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ اس گھر میں بھی 2 دن پہلے اللہ کا ایک بندہ چلا گیا. یہ بات آپ کے میرے لیے اب نئی نہیں رہی, ہم ہر موقع پہ ہر جگہ پہ موت کی خبریں سنتے ہیں اور آپ بھی اس چیز کی گواہی دیں گے کہ ہفتہ ایک گزرتا نہیں اور ایک نئی موت. ایک طرف شادیاں ہیں, ایک طرف موتیں ہیں, ایک طرف دنیا داریاں بھی ہیں. میری آپ کی مہلت کب ختم ہو جائے میں اور آپ نہیں جانتے. سورۃ انبیاء کے شروع میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آپ کے میرے لیے زندگی میں جو موقع دیا جاتا ہے اس سے فائدہ اٹھانے کی بجائے بہت سارے لوگ صرف دنیا کے غموں اور پریشانیوں میں پریشان رہتے ہیں, اور جو سب سے بڑا غم اور پریشانی ہمیں لاحق ہونی چاہیے وہ نہیں ہے. اپنے آپ سے خود سے پوچھئے کہ کیا مجھے اصل میں جو پریشانی ہونی چاہیے وہ ہے؟ آپ دیکھیے کہ ساری زندگی آپ اور میں دنیا کے غموں میں جیتے ہیں. بچے 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 بڑے ہو جائیں, پڑھ لیں, پڑھ لیا پڑھ لیا, اب ان کا کیریئر بن جائے, اب ان کے اچھے گھروں میں رشتے ہو جائیں, اور اچھے گھروں کے رشتوں کے بعد پھر ہم چاہتے ہیں کہ اب ان کی فوراً ہی شادی کے بعد بچوں کی خوشخبریاں مل جائیں, اور بیٹیاں ہیں تو الگ گھروں میں چلی جائیں, اور بیٹے ہیں تو وہ بہترین جاب کرنے والے اور خوشی ہو جائیں, اور پھر بچوں کے بچوں کے بچے, اور پھر ہم قبر میں جانے کے قریب ہو جاتے ہیں. سچ بتائیے, کیا یہ زندگی مجھے آپ کو اس وجہ سے ملی تھی؟ کیا ہم سب اس دنیا میں صرف اپنی دنیا کے غموں میں رہ گئے؟ کیا ہم نے اللہ تعالیٰ کی اس بات کو کہ اقترب للناس حسابہم, قریب آ گیا لوگوں کے حساب کا وقت, وہم فی غفلت موردون, اور وہ ابھی تک غفلت میں منہ پھیرے ہوئے ہیں, کیا میں غفلت میں ہوں؟ یہ ایک سوال ہے میرا اپنے آپ سے, آپ کا خود سے ہونا چاہیے. ہم میں سے ہر ایک کو اپنے اوپر اس بات کو لے کر سوچنا ہے, کیا میں غفلت میں ہوں؟ اب کیسے پتہ چلتا ہے کہ آپ اور میں غفلت میں ہیں؟ اس کا بہترین طریقہ کیا ہے کہ ہم اپنا چھوٹا سا حساب لے لیں. چند مثالیں آپ کے سامنے رکھوں گی جس سے لوگوں کے حالات پہ قیاس کرتے ہوئے ہمیں یہ پتہ چل جائے گا کہ آج کے دور میں عموماً غفلت کس کس چیز سے ہے. پھر آپ اور میں اس چیز کا بہترین اندازہ لگا سکتے ہیں کہ میرا تذکرہ کن لوگوں میں آتا ہے. آپ دیکھیے کہ آج آپ دیکھیں کہ دنیا ہمارے سامنے اتنی بڑھ گئی, جہاں دنیا کی خوشیاں اور دنیا کے آرام اور کمفورٹ پانے میں محنت کر رہے ہیں نا, اتنا ہی اس کے غموں سے جان چھڑانے میں بھی محنت ہو رہی ہے. لیکن جو چیز اصل میں ہمیں غم لگ جانا چاہیے تھا جس چیز کا, وہ غم نہیں ہے, اور ہے بھی تو وہ ایک پورشن ہے ہماری زندگی کا. جیسے آج ہم نے اپنی عبادات کو اپنے زندگی میں ایک خاص جگہ پہ رکھا ہوا ہے, 5 وقت کی نماز, روزہ, حج, زکوٰۃ. یہ تو وہ بندہ ہے جو بڑا نیک ہے, بہت سارے تو 5 وقت کی نماز بھی نہیں پڑھتے, اور بہت سارے تو ایسے لوگ ہیں کہ جن کی دو دھاری زندگی چل رہی ہے, ایک طرف نماز روزے میں اللہ اور اس کا دین ہے, اس کا رسول ہے, لیکن جہاں اپنی زندگی گزارنے کی باری آتی ہے تو پھر بالکل ہی اپنی زندگی بدلنے لگتی ہے, اور ہم اپنے آپ کو معاشرے اور وقت اور حالات کے سامنے جواب دہ محسوس کرتے ہیں. लेकिन असल बात यह है कि अल्लाह ने हमें एक बहुत बड़ा काम दिया था। आप और मैं अपने ऊपर क्यास करें, दुनिया से जो चले गए वो तो चले गए, लेकिन मैं और आप अभी मौजूद हैं। क्या मैंने करने वाले कामों में से जो काम था वो कर लिया है? और वो काम क्या था? कि हम इस दुनिया में रहकर दुनिया को भी फ़ायदा देते और दुनिया के बाद के लिए अपनी आखरत की बेहतरी करते। यानी अल्लाह ने जो आपको मुझे एक बड़ा सा काम दिया है ना, जिसको आप कहें कि बारीकियों में जाए बगैर अगर हम आम तौर पे बात करें तो वो क्या है कि दुनिया में पहले अपनी फ़िक्र करो और अपनी फ़िक्र के साथ साथ फिर दूसरों की फ़िक्र करते हुए इस दुनिया से गुजर जाओ। अब आप और मैं जब इस दुनिया की इन फ़िक्रों में जीते हैं और इस तरह की बातें करते हैं, तो फिर उसके बाद क्या हकीकत में हमारे पास इस दुनिया के गमों का गम रहता है? आप सोचें ना, एक बंदे को एक बड़ा गम लग जाए तो छोटे गम रहेंगे। मैं छोटी सी मिसाल देती हूँ कि एक बाप है और अपने छोटे छोटे बच्चों को लेकर जंगल में निकलता है। चलो बच्चों को सैर करवा लूँ, चलो वॉक कर लें, जो भी कह दीजिए। अब जब वहाँ जाएगा तो मासूम बच्चों को देखेगा तो उसको फिक्र क्या होगी कि इधर चींटी है, उधर कीड़ा है, उधर मकोड़ा है, कोई चींटा मेरे बच्चे के पाँव पे ना चढ़ जाए, चींटी काट ना ले। और उसको इतनी फिक्र होगी कि हो सकता है वो वहाँ इंजॉय ना करें। इतने में एकदम दूर से अगर भेड़िए के या शेर के चिंघाड़ने की आवाज़ आती है, अब मुझे बताइए क्या इसके बाद उसको अपने बच्चे के इर्द गिर्द घूमते फिरते उन चींटों और उन चींटियों का गम रहेगा? नहीं रहेगा। उसका फिक्र क्या होगा कि मेरे बच्चे इस शेर से बच जाए। उसको तो हो सकता है सारा जंगली शेर दिखे, खौफ आ जाएगा शेर से। हुआ क्या, क्या आप चींटियाँ और चींटे वहाँ नहीं हैं, मौजूद हैं? जब एक शेर की चिंघाड़ ने वो चींटियाँ और चींटे भुला दिए, हैं मौजूद, चढ़ भी सकते हैं, पर उसको ये पता है कि शेर ने अगर बच्चे को पकड़ लिया तो छूटेगा नहीं। बाकी रह गया, अगर चींटा या चींटी चढ़ भी गई पाँव पे तो कोई बात नहीं, उतर जाएगी। बस इसको अपनी ज़िंदगी में ले लीजिए। और आने वाले आएंगे, दुनिया में भी जाने वाले जाएंगे। आज कोई पैदा होता है तो कल कोई दुनिया से जाता है। मुझे इस वक्त फ़िक्र इस बात की होनी चाहिए कि मैं किधर जा रही हूँ। कल मेरे मरने की खबर अगर किसी को आए तो लोग मेरे जाने पर क्या कमेंट्स देंगे? क्या मैं सिर्फ अपनी दुनिया के गमों हमों में जाऊँगी या मुझे दुनिया में किसी और का भी गम है? सारी ज़िंदगी हम अपने बच्चों की दुनिया के गमों पर रोते हैं, कभी बीमारियों, परेशानियों, सेहत, माल, घर, लेकिन जो सबसे बड़ा गम है वो आखरत का गम है। फ़िक्र आखरत वो शेर है कि जिस शेर से मैंने आपने अपने बच्चों को अगर बचा लिया तो याद रखिए कि उसके बाद इंशाल्लाह अल्लाह उनके दुनिया के भी गम और हम दूर कर देगा। ये दुनिया इस काबिल नहीं है कि मैं और आप इसको अपना गम दें। ये दुनिया इस काबिल नहीं है कि मैं और आप इसकी खुशियों को पाने के लिए जिए। तो चलिए, आप अपने आप से और मैं अपने आप से पूछती हूँ कि हमने अपने आखरत के मसले को क्या वाकई सबसे बड़ा मसला बनाया? क्या मेरा बच्चा नमाज ना पढ़े तो मुझे उतनी ही फिक्र लगती है जितना वो स्कूल ना जाए तो मुझे फिक्र होती है? शौहर कमाए ना तो जितना उसका गम है उतना ही गम है, या उसके नमाज ना पढ़ने का गम ज़्यादा है? हम अगर अपने अमल के आईने में खुद को देखें तो यकीन कीजिए कि हमें ये अंदाज़ा हो जाएगा कि एक तरब अलनासी हिसाब हम व हम फी गफलत मोरद, कि लोगों के हिसाब का वक्त करीब आ गया लेकिन लोग अभी तक गफलत में मुँह मोड़े हुए हैं। अगर रेडियो पे एक ख़बर सिर्फ आ जाए या टीवी पे एक अनाउंसमेंट हो जाए कि जलजला आने वाला है या सैलाब आने वाला है, तो मेरा ख्याल है कि उससे बचने की तैयारियां और कोशिशें इससे बहुत ज़्यादा हों जितनी आज हमें आखिरत की पकड़ से बचने की फिक्रें हैं। मुझसे कह देना और बात है, आपको अगर मैं मौका दूँ और आप किसी और को दें, किसी से पूछिए कि आपको आखिरत की फ़िक्र है, वो कहेगा बहुत फिक्र है। आपको जन्नत की तलब है, वो कहेगा बहुत ज़्यादा है। आपको जहन्नम से खौफ आता है, लेकिन कितना आता है इसका अमल से जायज़ा देखिए। बस आप देखिए कि यहाँ तो कोई इतने सख्त रूल्स नहीं होते, लेकिन अगर किसी मुल्क में ये कहा जाता है कि सीट बेल्ट बांधिए वरना आपको 700-800 करोन का टिकट देना पड़ेगा, और कोई कह दे कि मुझे इस रूल से डर बड़ा लगता है लेकिन सीट बेल्ट ना बांधे, ओवर स्पीडिंग ना करना छोड़े, और पुलिस आए उसको पकड़ कर ले जाए और मुँह से कि नहीं मुझे डर बड़ा लगता है, मुझे डर बड़ा लगता है, तो आप कहेंगे कि अगर आपको इतना इस पकड़ का डर था तो आप इस रूल को फॉलो कर लेते। उसी जगह में दुनिया में लोग रूल्स को फॉलो नहीं करते जहाँ पकड़ का डर कोई नहीं होता। पुलिस आएगी हंस देंगे, कोई आएगा उसको रिश्वत दे देंगे, और हमें किसने पूछना है? क्या हमारा ये ख्याल है कि अल्लाह ने क़यामत के दिन हमारी मुस्कुराहट पे में छोड़ देना, हंस के दिखा देंगे, कोई धमकी दे देंगे? आप देखें ना, दुनिया में बंदा जब कहीं फंसता है ना तो या तो माल काम आता है या ताल्लुकदारी काम आती है, कोई किसी का ओहदा है कहीं कोई इज्जत होती है, कोई किसी से राह और रसम होती है, ये चार पांच चीज़ें हैं जिसको हम लेकर दुनिया में भी जेलों से निकल आते हैं। चोर जो है वो दनदनाते फिरते हैं और बाज़ दफ़ा बेगुनाह लोग जेलों के अंदर होते हैं। क्या हम आखिरत के बारे में ये तसव्वुर भी कर सकते हैं कि मैंने कुछ बुरा किया और उसका बदला किसी और को मिल जाए और आपकी अच्छाइयाँ मेरे पास आ जाए? अल्लाह तो बार बार कहते हैं कि यौम अला तजज़ी नफ्सुन नफ्सिन शैया, वो दिन है जिस दिन कोई नफ्स किसी नफ्स के ज़रा भी काम नहीं आएगा। तो सबसे बड़ी फिक्र इस बात की होनी चाहिए कि आज इस गफलत के पर्दे को उतारा जाए। और आप कहेंगे कि ठीक है जी, आप अपनी फिक्र कीजिए, आपको हमारी इतनी फिक्र क्यों पड़ गई है? तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस, मोमिन मोमिन का भाई है। और आपने फरमाया कि मोमिन वो है जो दूसरे के लिए वही पसंद करे जो कि अपने लिए करता है। फिर अल्लाह के नबी ने फरमाया कि एक मुसलमान दूसरे मुसलमान के लिए ऐसे ही है जैसे एक जिस्म होता है और उसके जिस्म के एक हिस्से को दर्द होती है तो दूसरे हिस्से पे भी उसकी असर होता है। तो खैर ख्वाही क्या है? अद्दीन व नसीहा, दो लफ्ज़ों की हदीस है, मेरे साथ दोहराए, अद्दीन अन नसीहा, दीन खैर ख्वाही का नाम है। देखिए दुनिया में तो कोई कारोबारी है वो अपना नफ़ा दूसरे से छुपा लेगा कि मैं क्यों किसी को बताऊं, वो भी नफ़ा मैं ही ले लूं। दुनिया में तो कहीं रिश्ता करके भी लोग छुपा लेंगे कि क्या ज़रूरत है बताने की, पता नहीं को ये रिश्ता तुड़वा ना दे। दुनियादार अपना फ़ायदा ले सकता है, दूसरे के नुकसान से रोक सकता है, लेकिन एक सच्चा मोमिन ये काम नहीं कर सकता। तो इसी खैरख्वाही का तकाजा है कि हम सब एक दूसरे को हक बात की नसीहत दें। सूरत अलसर, जिसके बारे में बाज़ सहाबा ये कहा करते थे कि अगर अल्लाह ताला कुरान में कुछ भी नाजिल ना करता, सिर्फ सूरत अलसर नाजिल कर देता तो हमारी हिदायत के लिए काफ़ी था। के वलसरिन नल इंसान अलफ़ी खुसर, ज़माने की कसम कि इंसान घाटे में है, इल्लल्लज़ीना आमनू। अब देखिए हमने तो इतने आराम से ये बात सुन ली, इंसान घाटे में, कुछ भी नहीं हुआ। दिन में आप 100 दफ़ा सूरत असर की तस्वीर कर लीजिए और कई वजीफे बने होंगे जिसमें लोग पढ़ते होंगे। इस जुमले को सुन के कुछ नहीं हुआ कि इंसान घाटे में है, लूज़र है, बैंकरप्ट हो रहा है। और अगर खुदा ना खासे मर्द बाहर से आए और मुंह लटका और आप पूछें क्या हुआ, आप वो कहें जी 10 लाख का नुकसान हो गया, फिर उससे क्या हाल होता है? यानी दुनिया के तो हमारा यकीन करें एक सेल का साइन मिस हो जाए और हमें पूरी कीमत पे चीज़ लेनी पड़े जो दूसरा सेल पे ले आए, तो हमें तो वो घाटा भी बड़ा चुभता है। दुनिया में तो हम जमा प्लस करते हैं, छोटे छोटे नफ़े नुकसान प्रोज एंड कॉन तोलते हैं, लेकिन हम दीन आखरत के मामले, हाँ जी इंसान घाटे में है, बड़ी बात है करने वाली, लेकिन हकीकत है कि इंसान घाटे में है। खुशी घाटा, गमी घाटा, सेहत घाटा, औलाद घाटा, किसी का आना घाटा, क्यों? कि दिन ब दिन हम सब अपनी फना के करीब जा रहे हैं। कल भी मैंने इसी घर में ये जुमला बोला था कि अगर किसी को पैसा रोक सकता यहाँ से जाने से, किसी को माल रोक सकता, किसी को औलाद रोक सकती, कोई किसी का ताल्लुकदारी, किसी का इज्जत, उसका शर्फ रोक सकता, तो इस घर के बड़े ना जाते, कोई जाने देता? सारा पैसा औलाद ने लगा देना था, कहना था हमारे बूढ़े बाप को ना लेके जाओ, सच है कि झूठ है? और सारे ख़ानदान ने बड़े बड़े वजीरों मशीरों को बुला लेना था कि हम इनको नहीं जाने देंगे, कोई जाने देता? लेकिन चले गए। और जिस दिन नबी सल्लम दुनिया से चले गए थे और फातिमा को यकीन आ गया था कि मेरा बाप दुनिया से चला गया, उसके बाद हर बेटी को यकीन आना चाहिए कि मेरे बाप ने नहीं रहना, और हर बीवी को यकीन रहना चाहिए कि शौहर ने नहीं रहना, क्योंकि कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत। तो जाने वालों का गम मनाना कोई फ़ायदा नहीं, ये तो अपनी बाकी ज़िंदगी को और भी ज़ाया करना है। करना क्या है कि मौत के सूरत में जो आंखों से पर्दा हटना है ना, उसको दुनिया में हटा लें। यानी आप कह लीजिए कि आज की इस गुफ्तगू का मकसद क्या है कि गफलत के पर्दे को हटा लें। मैं भी ज़िंदा हूँ, आज की डेट देखिए 24 जनवरी 2018, ठीक है, डेट याद कर लीजिए। आप अपनी ज़िंदगी का आज का दिन रखिए कि मैंने अपनी ज़िंदगी में एक नया टर्न लेना है, एक नया मोड़ है। आज तक मैं जितनी नेक थी, मैंने अब इससे ज़्यादा होना है। आज तक की नमाज से अगली नमाज बेहतर होगी, आज मेरे हुकूक़ुल इबाद जहाँ है अगले दिन में बेहतर होंगे, क्योंकि अल्लाह के नबी सल्लम ने फरमाया कि वो तबाह हो गया जिसका आज उसके कल से बेहतर नहीं है। ये तो फितरत का भी असूल है। साथ साथ अगर घर को देखभाल ना करते रहे, रेनोवेट ना करें, तो हर दूसरे दिन ये घर पुराना ही दिखेगा ना। तो लिहाजा हमने तामीर शख्सियत करनी है। अगर हम देखें कि इस वक्त जो गफलतें इंसान के ऊपर तारी हैं वो क्या क्या हैं, चंद चीज़ें मिसाल के तौर पे वन बाय वन रखूंगी, और आपने मैंने सिर्फ और सिर्फ अपने ऊपर लेना है। होता क्या है कि जब कोई नेगेटिव चीज़ सुनते हैं तो हमें ससुराली रिश्तेदार और अपने वो दोस्त साथी नज़र आते हैं जो अच्छे नहीं लगते, हम कहते हैं ये सारी उसकी बातें हो रही हैं। नहीं, अपने ऊपर देखिए, हासिबु कबलन तो हासबु, अपने ऊपर देखेंगे। तो आज आप देखिए कि जो गफलत इस ज़िंदगी में अमूमी तौर पे तारी है वो क्या है, अल्लाह का दीन सीखने से गफलत है। इस वक्त मौजूदा सूरत हाल अगर उम्मत मुस्लिमा की देखिए, किसी सोर्स की कमी नहीं है, माल की कमी नहीं। अभी चंद दिन पहले एक मैसेज आया था, अगर आप बाद में लेना चाहें, बताना चाहें तो मैं आपको दिखा दूं कि दुनिया में इस वक्त सबसे ज़्यादा माल मुसलमान मुल्कों के पास है। दुनिया का अमीर तरीन शख्स मुसलमान है। दुनिया में आप देखिए रिसोर्सेज मुसलमानों के, और आप सिर्फ इस पाकिस्तान के रिसोर्सेज देखें, खियोड़े की सबसे बड़ी कान इधर है, पांच दरियाओं की ज़मीन इधर है, माशाल्लाह ज़मीनें सोना उगलती हैं, कोई कमी नहीं है हमारे इस मुल्क में। अल्लाह ने हमें इतना प्यारा मुल्क देकर भेजा है, लेकिन कमी क्या है कि आज हम इन रिसोर्सेज का सही फ़ायदा नहीं उठा रहे। आज उम्मत मुस्लिमा को जो सबसे ज़्यादा सज़ा मिल रही है वो इस दीन को ना सीखना, इस दीन से गफलत की बिना पे है। एक साथी है, उन्होंने एक बात शेयर की, बाहर के मुल्क की बात है, कहता है कि मैं अपने आप को बड़ा दीनदार समझता था, जिसको हमारे यहाँ कहते हैं जी बड़े फन्ने हाँ हैं हम जैसा कोई हो। और सच बात है, बाद हम ज़ाहरी नेकियाँ थोड़ी बहुत करके, जैसे इस वक्त मैं दर्स दे रही हूँ तो आप मुझे बड़ा नेक समझेंगे, इसी तरह किसी को नमाज़ें पढ़ता देख लें तो लोग उसको बहुत ही नेक समझते हैं। वो कहते हैं मैं अपने आप को बड़ा नेक समझता था, लेकिन मेरी सारी खुशफहमी उस वक्त दूर हो गई कि जिस दिन मैं किसी शख्स के पीछे जमात से नमाज़ पढ़ रहा था, पास से कोई नॉन मुस्लिम गुजरा, गुरा था, नमाज के बाद मुझे रोक कर कहता है कि तुम ये बताओ कि तुम ये एक्सरसाइज क्या कर रहे थे। तो इसने कहा कि एक्सरसाइज नहीं है, ये नमाज़ है, हम नमाज़ पढ़ रहे थे। कहा अच्छा, ये तुम बीच में बड़ी प्यारी से कोई गाना गा रहे थे, यानी उनको तो तिलावत भी एक राइम लगती है ना, तो ये क्या था। उसने कहा ये हमारा होली कुरान है, बहुत प्यारा। कहा कि बड़ा अच्छा लग रहा था, ये इसमें क्या कह रहे थे। कहता ये मुझे नहीं पता। कहा अच्छा, वो शख्स कौन है जो एक तुम सबके सामने खड़ा हुआ है। कहा ये हमारे इमाम साहब है। कहा अच्छा, फिर मुझे उसके पास ले जाओ। वो गोरा उनके पास गया, आके कहने लगा कि इनसे तो मैंने पूछा लेकिन इन्होंने तो जवाब नहीं दिया, लेकिन मैं आपसे ये बात पूछना चाह रहा हूँ कि ये जो आप अभी पढ़ रहे थे ये क्या था। तो इमाम साहब ने कहा कि अफसोस के साथ कि मैं तो कारी हूँ, मैं कोई कुरान का आलिम नहीं, मुझे खुद नहीं पता इस कुरान में क्या। उस वक्त उस गोरे ने यह बात कही कि ये कैसे मुमकिन है कि आप वो किताब जो दिन में 5 बार पढ़ते हैं आपको समझ ही नहीं आती। तो याद रखिए, अल्लाह का दीन सीखने से गफलत इतनी बड़ी सज़ा है कि जिसने खुलफाए राशिदीन, ताबईन, तबा ताबईन के बाद के अदवार में फितने, लड़ाई झगड़े और मुसलमानों को दुश्मनों के हाथों से पिटवा दिया, ये अल्लाह की सुन्नत है। जब तक मुसलमान अपने दीन को सीखता रहता है, उम्मत गुनाहों से और जहालत से बचती है। इसके अदरवाइज़ क्या होता है, गुनाह शुरू हो जाते हैं और गुनाहों से दिल में सख्ती आती है, और जिसका दिल सख्त हो गया, सुम्मा कसत कुलूबुकुम मिन बादि ज़ालिका फहियकल हिजारा, सूरत बकरा में अल्लाह ताला कहते हैं कि फिर तुम्हारे दिल इसके बाद और भी सख्त हो गए, हत्ता के पत्थरों से भी ज़्यादा तुम्हारे दिल सख्त हो गए। और जब दिल सख्त होगा तो लिख लीजिए कि इंसान फिर अल्लाह ताला से और आखरत के घर से बिल्कुल गाफिल हो जाता है। वो इंसान हिसाब किताब से कैसे डर सकता है जिससे आखरत में मीज़ान और पुल सरात के बारे में कुछ खबर ही ना हो। इमेजिनेशन में कीजिए, जिस स्टूडेंट ने बुक पढ़ी नहीं उसको उसका इम्तिहान कैसे देना है। मैंने केमिस्ट्री पढ़ी नहीं तो मुझे क्या पता है कि CH3 और H2OH क्या होता है, मुझे नहीं पता। इल्म से बंदे के अंदर खौफ पैदा होता है। और याद रखिए कि वो इंसान बुरे खात्मे से कैसे बच सकता है जो ये जानता ही नहीं है कि दिल अल्लाह ताला की दो उंगलियों के बीच में है, जिसे चाहता है जब चाहता है पलटा देता है। आज हमारा बहुत बड़ा एक मसला तफरकाबाजी का है, फितनों का शिकार है। हम सिर्फ ख़ुद को मुसलमान कह लें बात ही नहीं पूरी होती, कहते उसके बाद क्या है, अच्छा कौन सा जमात है, कौन सा मसलक है। और आप देखिए, अपनी फिरके अपनी जमात का नाम देखकर जब हम मस्जिदों में घुसें और दूसरे की मस्जिद चाहे वो हमसे भी अच्छी हो, लेकिन हम इसलिए ना जाएं कि जी ये तो फलाँ हैं, ये तो फलाँ हैं। आप मुझे बताइए इससे बड़ा भी कोई अंधेरपन होगा। दुश्मन तो आपको सिर्फ इसलिए मार रहा है कि आप मुसलमान हैं, गोली तो मुसलमान के सीने पे चलती है। ये अलग बात है कि अब उनको भी पता चल गया है कि शिया क्या और मुस्लिम क्या और ब्रेलवी क्या और हनफी और वहाबियत क्या। आज नॉन मुस्लिम्स ने हमसे ये बातें सुनकर सीख ली और आज हमारी उम्मत को फिरका वारियत के इस तरह के जहर में डाला हुआ है कि कोई किसी दूसरे की बात नहीं सुनने आता। बताओ वो किस मसलक से हैं, वो किस जमात से हैं। भाई ये बताइए कि वो नमाज़ पढ़ते हैं कि नहीं पढ़ते, आप नमाज़ पढ़ते हैं कि नहीं पढ़ते, और जब पढ़ें तो ये गम लग जाता है किस तरीके से पढ़ते हैं, आपके हाथ किधर बनते हैं, आपका सजदा ऊंचा होता है कि नहीं होता है। तो क्या पता चला, फिरका वारियत का एक ही हल है, सीधा सा सिंपल। आप सब सिस्टर्स माशाल्लाह समझदार हैं, देखिए खाना पकाना आ जाए तो आपको गम ही ख़त्म हो गया कि इसमें नमक डाला था, मिर्च डाली थी, आपने खुद सीख लिया खाना पकाना। तो आपको कौन फिर बहका सकता है? कोई आपसे मिर्चों की जगह पे चीनी तो नहीं डलवाएगा? जब मैं और आप असल सोर्स कुरान और सुन्नत को थाम लेते हैं, कुरान को एक दफ़ा, मैं कहती हूँ फितने तो सारे शुरू होते हैं तब जब हमें खुद नहीं पता कुरान में क्या है। और माशाल्लाह जितने भी लोग दीन के नाम पे इस वक्त सामने आते हैं, कोई ये तो नहीं कहता कि नमाज ना पढ़ो। अगर आज मुसलमानों के बिलफर्ज 10 फ़िरके भी हैं, कोई एक फ़िरका ये कहता है कि 5 वक्त नमाज ना पढ़ो? है कोई? अगर वो ये कहेगा तो वो तो मुसलमान ही नहीं है। तो फिर ये बताइए, क्या सारी उम्मत नमाज पे जमा हो गई है फिर भी नमाज नहीं पढ़ते? इस मुल्क में एक यानी रफ स्केच के मुताबिक जो रिसर्चेज आती हैं बाहर इधर, less than 10% लोग नमाज पढ़ते हैं। कलमा नहीं आता लोगों को। आप घरों के मासियों और मेड जब नई नई गांव और देहातों से आती हैं, आप उन्हें के कलमा सुनाओ, उनको पूरा कलमा नहीं आता। सूरह फातिहा पूछिए, वो कहते हैं वो तो किसी की कब्र पर खड़े होकर पढ़ते हैं, यहाँ हम क्या पढ़ें? इतनी जहालत हो गई। और आज आपके मुल्क की चोरियाँ, चिकारियाँ, करप्शन, ये क्यों है? क्योंकि पता नहीं कि जुर्म कितना बड़ा है। मैं अक्सर सोचती हूँ कि जिस मुल्क की जेलों पर और अदालतों में और जराइम को ख़त्म करने पर जो पैसा लग रहा है, ये सारा इल्म की नशर व इशात पर लग जाए। हुकूमत का एजेंडा इस बात पे मुश्तमिल हो कि पहले हमने अपने मुल्क की जहालत ख़त्म करनी है। फ्री टाइम दीजिए, 2-2 घंटे की मुफ्त फ्री तनख्वाह दीजिए, जाइए उन 2 घंटे में कुछ सीख कर आएँ। डॉक्टर्स डॉक्टरों में और जो रोज़गार वाले हैं रोज़गार में, कारोबारी मर्द भी अपने काम से निकले। क्या उनका मकाम सिर्फ पैसा कमाना है? आज हम अपने ही घर के मर्दों को देखें, उनकी ज़िंदगी का मकसद क्या है? और जायदादें बनाना, और कोठियाँ, और घर। 100-100 साल का सामान पड़ा हुआ है, फिर भी ज़रा सा नफ़ा कम हो जाए उनका मुँह लटकता है। वो कहते हैं 5 नमाज़ें पढ़ लेते हैं, यही बहुत है, ये काम नहीं है। आज अगर मैंने आपने इस दुनिया में जीने के बाद बग़ैर कुरान को समझे और सीखे अगर दुनिया से चले गए, कल हमारे लिए एक बहुत बड़ी हसरत का ज़रिया होगा। और ये भी याद रखिए कि इस दुनिया में ही ये मौका मिलना है। जन्नत में हर नेमत मौजूद होगी, लेकिन इस कुरान को और इस दीन को सीखने की नेमत नहीं होगी, क्योंकि ये तो दुनिया की चीज़ थी, इसका काम तो आज था। इसलिए ज़रूरत है इस बात की कि जहलीत से बचा जाए, क्योंकि जहालत इंसान को कहाँ तक पहुँचाती है। तारीख़ में एक वाक्या है, काजी अबू बकर बिन अलरब मालकी हैं, वो एक हकायत बयान करते हैं। कहते हैं कि मशरक़ के रहने वाले लोग जो थे, वो अपने ज़माने के एक बहुत बड़े फ़कीह यानी बहुत समझ रखने वाले आलिम थे, उनका नाम था अलामा तरतुशी। नामों में ना उलझे। कहते हैं कि ये उंदलस में गए। आपको तो उंदलस क्या था, जो बाहर रहते उनको तो खूब पता है। वो उंदलस के जहाँ मुसलमानों के झंडे गड़े हुए थे, 1000 साल तक मुसलमानों ने स्पेन पे हुकूमत की। और आज अगर आप में से कोई गया हो मेरे समय तो दिल खून के आंसू रोता है। उन गलियों से गुजरते हुए ऐसे लगता है इंसान को खौफ आता है कि ये हालत होती है जब मुसलमान अपनी किताब से हटते हैं। उस शहर की बर्बादी की वजह क्या निकली? तफरकाबाजी और दीन से दूरी और हुब्बे दुनिया। पूरी जो हुकूमत थी वो छोटे छोटे टुकड़ों में बढ़ गई और दुश्मनों ने बाहर से आकर कब्ज़ा कर लिया। सलमान की तो हमेशा हलाकत ऐसे होती है। तो बहरहाल ये उंदलस में जब गए तो एक महाज पर मस्जिद में दाखिल हुए और नमाज़ पढ़ने लगे। वहाँ इब्ने अरबी नाम के एक बुज़ुर्ग मौजूद थे। जब इन्होंने नफिल नमाज पढ़ी और रुकू में जाने के लिए तकबीर कही तो रफुल यदैन किया। आप सब जानते हैं कि रुकू में जाने से पहले अल्लाह अकबर कहते हुए हाथ उठाना, फिर रुकू से उठे तो दोबारा किया। और ये नबी सल्लम की सुन्नत से तो कोई बड़ी बात नहीं है, ना ये हलाल हराम का मसला है, ना ये कोई ऐसी, ये एक सुन्नत है जो करनी चाहिए। खैर, उस वक़्त जो उंदलस के लोकल लोग थे ना, वो रफुल यदैन नहीं करते थे। जब लोगों ने इनको वहाँ रफुल यदैन करते देखा तो नमाज में इनको मारना शुरू कर दिया कि ये कौन शख्स आ गया कि ये तो हमारी मस्जिद में आकर रफुल यदैन कर रहा है। और वो जो अलामा तरतुशी थे, उनको वहाँ का बड़ा था इब्ने अरबी, इन्होंने हुक्म दिया कि इनको कत्ल करो और समंदर में डाल दो। ज़रा सा सोचिए कि बड़ा आलिम, इतना बड़ा आलिम उस दौर का कि जिसको अल्लाह ने दीन की समझ दी हुई थी, सिर्फ जहालत की वजह से मारा गया। ये एक मिसाल नहीं है। जहालत इंसान को उसके अपने नफे से खुद दूर कर देती है। आप देखिए कि एक कारोबारी है और उसको पता ही ना चले और सौदा उसके हाथ से निकल कर किसी दूसरे को पहुँच जाए, तो उसको नुकसान हुआ कि नहीं हुआ? आज ज़रूरत है इस बात की कि दीन का इल्म सीखा जाए और फिर अपने ऊपर लीजिए, किसी दूसरे की फिक्र ना करें, खुद से पूछें। देखिए, नबी सल्लम का दीन सिंपल और आसान है, अद्दीन व युसर। हमारा दीन कोई बहुत इंटेलेक्चुअल नहीं है, कोई फलसफा नहीं पढ़ाता, हमारे दीन में कोई मैथमेटिक्स नहीं पढ़नी पड़ती। हम सब जानते हैं कि नबी सल्लम उम्मीद है, 40 साल तक कुछ नहीं पढ़ा और एक दिन इकरा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़ खलक़ल इंसान मिन अलक़, वही उतरी और उसके बाद अल्लाह की रहमत से सिलसिला शुरू हो गया। पहली बात है, 40 साल की उम्र तक भी अगर आपने एक लफ्ज़ नहीं पढ़ा तो स्टिल यू कैन लर्न, आप फिर भी सीख सकते हैं, क्योंकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसके बाद सीखा। दूसरी बात आप देखिए, अरब के बद्दू बेदवंस बिल्कुल जाहिल और उजड़ थे, चरवाहे थे, जूते नहीं पहनते थे, सारा दिन बकरियों को चराते थे, उनके जिस्मों से बकरियों की मेंगनियों की बू आती थी। वो इस दीन को सीखकर दुनिया के लीडर बन गए, वर्ल्ड लीडर बन गए। हज़रत अबू हुरैरा जो इल्म में इतना शोहरा रखते हैं, सबसे ज़्यादा हदीसें उन्होंने रिवायत की, अमीरुल मोमिनीन फिल हदीस उनको कहा जाता है, वो जब इल्म की वजह से इज्जत पाते थे, लोग उनको ऊंची मस्नद पे बिठाते थे, तो ख़ुद को कहते थे कि अबू हुरैरा तू था क्या, कबीला दौस का एक ग़ुलाम, तेरी औकात क्या थी कि तू लोगों की जूतियाँ सीधी करता था, जहाँ काफ़िले पड़ाव डालते तू वहाँ सामान रखता, उनकी जगह बनाता, और जब उठ के चले जाते तो उनकी बची हुई चीज़ें उठाता। आज इस इल्म ने तुझे कितनी शान दी। याद रखिए कि अल इल्म यरफ़ो शान साहिबहु, इल्म अपने साहिब की शान को बढ़ाता है। बिलाल काबा की छत पे खड़े किए गए, हालांकि स्याह थे, हबशी थे, मोटे नाक वाले थे, और कुरैशी नहीं थे, अजनबी थे, आज के दौर में कहले सऊदी नहीं थे, अरब नहीं थे, गैर अरब शख्स खाना काबा की छत पे खड़ा होकर कहता है अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह, और वो शख्स जिसको शोलों का बाप कहा जाता था, उसकी मजम्मत में कुरान की आयतें उतर गईं कि तब्बत यदा अबी लहब व तब, ना शक्ल काम आएगी क़यामत के दिन, ना हसब आएगा ना नसब आएगा। तो पहली चीज़ इल्म-ए-दीन,